एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। स्वागत है। आज हम एक ऐसे अमेरिकी उपन्यास की दुनिया में जा रहे हैं जिसने न सिर्फ अपने समय में हलचल मचाई बल्कि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ बिल्कुल, रिचर्ड राइट का नेटिव सन
1940 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास, और इसके लेखक रिचर्ड राइट, उनकी कहानी भी कम अहम नहीं है।
सही का, वो 1908 में मिसिसिपी में जन्मे थे और उन्होंने वो दौर देखा था जिसे जिम क्रो साउथ कहते हैं,
जहां नस्ल के आधार पर भयानक भेदभाव था कानूनी तौर पर।
हाँ, वो क्रूरता उन्होंने बहुत करीब से महसूस की। फिर शिकागो आए, ग्रेट माइग्रेशन का हिस्सा बनकर कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े कुछ समय।
लेकिन उनका लेखन हमेशा जमीन से जुड़ा रहा, यथार्थवादी, है ना, जिसे नेचुरलिज्म कहते हैं।
बिल्कुल, ये दिखाना कि इंसान, खासकर बिगत थॉमस जैसे किरदार, अपने माहौल, अपनी परिस्थितियों की उपज कैसे बन जाते हैं। उनकी इच्छा जैसे गौण हो जाती है, और इसमें मनोवैज्ञानिक गहराई बहुत है।
और किताब आते ही एक सनसनी बन गई।
हाँ, सोचिए, बुक ऑफ द मंथ क्लब ने इसे चुना। किसी अफ्रीकी अमेरिकी लेखक की ये पहली किताब थी जिसे ये सम्मान मिला।
मतलब ये बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच गई।
हाँ, लेकिन प्रतिक्रियाएं काफी ध्रुवीकृत थी। कुछ ने कहा ये बेबाक सच है, अमेरिका का आईना,
और कुछ लोग इसकी हिंसा और नायक के चित्रण से शायद हिल गए।
बिल्कुल, कुछ को लगा कि ये अफ्रीकी अमेरिकियों की नकारात्मक छवि पेश कर रहा है। बहुत विवाद हुआ।
तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं, और राइटर आखिर कहना क्या चाह रहे थे।
हाँ, कहानी, उसके पीछे का समाज, और वो मुश्किल सवाल जो ये उठाता है।
तो शुरुआत करते हैं शिकागो के साउथ साइड से। 1930 का दशक, क्या माहौल है वहां?
माहौल देखिए बहुत घुटन भरा है। हम मिलते हैं 20 साल के बिगर थॉमस से, अश्वेत युवक है।
अपनी माँ, बहन, भाई के साथ एक कमरे के तंग से अपार्टमेंट में रह रहा है।
हाँ, और किताब की शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। एक सुबह कमरे में एक बड़ा सा चूहा घुस आता है।
वो चूहे वाला दृश्य, वो भूलना मुश्किल है।
बिल्कुल, बिगर उसे फंसाता है और फिर एक फ्राइंग पैन से उसे मार डालता है, बहुत बेरहमी से।
ये सिर्फ गरीबी का चित्रण नहीं लगता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट यहीं पर जैसे एक रूपक गढ़ देते हैं। वो चूहा, वो खुद बिगर है, फंसा हुआ, घृणित, हिंसा की तरफ धकेला हुआ,
परिस्थितियों का मारा हुआ एक फंसा हुआ जानवर।
हाँ, और इसी घुटन से निकलने की एक उम्मीद उसे दिखती है। एक अमीर श्वेत परिवार है, डॉल्टन, उनके यहाँ उसे ड्राइवर की नौकरी मिलती है।
लगता है शायद अब कुछ बदलेगा, गरीबी से निकलने का रास्ता।
पर यही कहानी में एक तीखी विडंबना है। मिस्टर डॉल्टन, जो हैं तो बड़े परोपकारी, अश्वेतों की मदद करने का दावा करते हैं।
हाँ,
असल में उन्हीं झुग्गी बस्तियों के मालिक हैं जहां बिगर जैसे लोग रहते हैं, और उनसे वो अच्छा खासा किराया वसूलते हैं।
मतलब एक तरफ मदद का दिखावा, दूसरी तरफ उसी स्थिति से मुनाफा कमाना।
ये पाखंड,
हाँ,
ये पाखंड पूरी कहानी में बार बार दिखता है। और यही नौकरी जो उम्मीद लग रही थी, वो बिगर की तबाही का कारण बन जाती है।
यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जहां से वापसी मुश्किल है।
बिल्कुल, डॉल्टन परिवार की बेटी है मैरी।
हाँ,
वो थोड़ी, क्या कहते हैं, उदारवादी है, कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित,
अपने माता पिता से अलग।
हाँ, वो और उसका प्रेमी जेन, जो वो भी कम्युनिस्ट है, बिगर के साथ बराबरी का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, साथ में खाना, पीना, घूमना,
जो उस समय के माहौल में सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, था। और ये बराबरी का बर्ताव भी बिगर के लिए सहज नहीं था, है ना?
बिल्कुल नहीं, वो डर जाता है। वो नस्लीय सीमाओं को जानता है जिन्हें मैरी और जेन अनजाने में लांग रहे हैं।
हाँ,
वो इस अपनेपन से और ज्यादा असहज और भ्रमित हो जाता है।
ये नेकनीयती भी एक तरह से खतरनाक बन जाती है।
हाँ, और फिर एक रात पार्टी से लौटकर मैरी नशे में है। बिगर उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले जाता है,
और तभी
मैरी की अंधी माँ मिसेस डॉल्टन कमरे में आ जाती हैं। बिगर एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है वो पकड़ा गया, उस पर न जाने क्या इल्जाम लगेगा। उसे डर है कि मिसेस डॉल्टन समझ जाएंगी कि कमरे में कौन है।
और उस घबराहट में
वो मैरी को चुप कराने के लिए, ताकि वो कुछ बोल न दे, उसके चेहरे पर तकिया दबा देता है, बस उसे चुप कराने के लिए।
लेकिन
वो अनजाने में उसकी हत्या कर देता है। दम घुट जाता है मैरी का।
अनजाने में हुई हत्या, डर के मारे। ये सोचना भी भयानक है कि व्यवस्था का डर किस हद तक ले जा सकता है।
और इसके बाद जो होता है वो शायद और भी ज्यादा भयानक है। पकड़े जाने का डर उस पर इतना हावी है कि वो सबूत मिटाने की सोचता है।
वो मैरी के शरीर को
आता
तो वो उसका सिर काट देता है।
ये पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? हमें बिगर के मन की उस अंधेरी जगह पर ले जाते हैं जहां सिर्फ डर और आतंक है।
बिल्कुल, वो कोई पैदाइशी दानव नहीं है, पर उसका डर, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती हैं।
और यही उपन्यास वो बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या बिगर सिर्फ एक कातिल है या वो हालात का शिकार भी है?
और क्या समाज उसे दोषी ठहरा सकता है जिसे उसने खुद ही इतना अमानवीय बना दिया है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है।
बिल्कुल नहीं। अच्छा, थोड़ा बिगर के किरदार को और देखें। नायक तो है पर बहुत जटिल, एंटी हीरो शायद बेहतर शब्द है।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत में वो कैसा है? गुस्से से भरा हुआ, उदास, शक्तिहीन महसूस करता है,
डरा हुआ, नफरत भी है उसमें।
हाँ, नस्लवाद और गरीबी ने जो मनोवैज्ञानिक चोटें दी हैं वो सब उसमें दिखता है। लेकिन अजीब बात यह है, बहुत ही अजीब, कि मैरी की हत्या के बाद उसे पहली बार लगता है कि वो जिंदा है, कि उसने कुछ किया है, कुछ ऐसा जिसने दुनिया को हिला दिया। उसे एक अजीब सी विकृत सी शक्ति महसूस होती है।
ये समझना बहुत मुश्किल है, जैसे हिंसा ने ही उसे पहली बार अपना अस्तित्व महसूस कराया हो। ये आत्म पहचान का कितना भयानक रास्ता है।
हाँ, पर ये एहसास उसे बचाता नहीं बल्कि और गहरे धकेलता है। वो झूठ पर झूठ बोलता है, जेन को फंसाने की कोशिश करता है, फिरौती का नोट लिखता है।
उसे लगता है वो सिस्टम को चला रहा है।
हाँ, कुछ देर के लिए उसे ये भ्रम होता है कि वो नियंत्रण में है, वो चालाक है।
और इस सब में वो अपनी प्रेमिका बेसी मायर्स को भी घसीट लेता है। बेसी का किरदार भी बहुत अहम है, वो क्या दर्शाती है?
बेसी वो उस अश्वेत महिला का प्रतीक है जो खुद गरीबी, निराशा और शायद दुर्व्यवहार के चक्र में फंसी है। थोड़ी राहत वो शराब में ढूंढती है।
बिगर के साथ उसका रिश्ता भी आसान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें थोड़ी सी कोमलता है पर डर और मजबूरी हावी है। वो बिगर के राज में शामिल हो जाती है पर अपनी मर्जी से नहीं, डर के मारे।
और अंत में बिगर का उसके साथ व्यवहार, वो तो कहानी का एक और त्रासद पहलू है।
हाँ, जब बिगर भाग रहा होता है, पुलिस उसके पीछे है, उसे लगता है बेसी कमजोर कड़ी है, वो शायद सच बता देगी।
और वो,
हाँ, शिकागो की बर्फीली रात में एक खाली पड़ी इमारत में वो बेसी की भी हत्या कर देता है, उसे ईंट से मार डालता है।
कितना भयानक! ये दिखाता है कि उत्पीड़न का जहर कैसे अंदर तक फैल जाता है। पीड़ित ही दूसरे पीड़ित पर हिंसा करने लगता है।
सही कहा, उत्पीड़न रिश्तों को भी कैसे भ्रष्ट कर देता है।
तो मैरी की हत्या के बाद शुरू होता है उपन्यास का दूसरा भाग, फ्लाइट यानी उड़ान। बिगर भाग रहा है।
हाँ, वो भाग रहा है पुलिस से, समाज से, शायद खुद से भी। उसे थोड़े वक्त के लिए आजादी का, ताकत का भ्रम होता है।
लेकिन सच ज्यादा देर छिपता नहीं।
नहीं, एक रिपोर्टर को भट्टी की राख में मैरी की कान की बाली और हड्डी मिल जाती है।
और बस
फिर तो पूरे शहर में तलाश शुरू हो जाती है, मैनहंट।
हाँ, वो शिकागो का मोस्ट वांटेड बन जाता है।
अखबार उसे एक वहशी दरिंदे की तरह पेश करते हैं। नस्लीय पूर्वाग्रह खुलकर सामने आ जाते हैं।
एक अश्वेत लड़का एक अमीर श्वेत लड़की का कातिल, समाज बिना सुनवाई के फैसला सुना देता है।
बिल्कुल, और फिर वो भागता है बेसी के साथ, साउथ साइड की वीरान इमारतों में छिपता है,
बेसी की हत्या करता है। और आखिरकार
एक इमारत की छत पर बर्फ से ढकी हुई, पुलिस उसे घेर लेती है, पानी की तेज धार मारकर उसे नीचे गिराया जाता है।
उसकी उड़ान खत्म।
हाँ, उड़ान खत्म। और शुरू होता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, फेट यानी भाग्य या नियति।
अब बिगर जेल में है, मुकदमे का इंतजार, समाज की नफरत का सामना कर रहा है, उसका परिवार भी उससे मुंह मोड़ लेता है।
यही एंट्री होती है बोरिस मैक्स की, एक यहूदी कम्युनिस्ट वकील। लेबर डिफेंडर्स नाम का संगठन उसे भेजता है।
मैक्स शायद पहला श्वेत व्यक्ति है जो बिगर को सिर्फ एक राक्षस की तरह नहीं देखता।
हाँ, वो कोशिश करता है, वो बिगर को एक इंसान के तौर पर समझने की कोशिश करता है। वो उसे घंटों बात करता है, उसके अंदर दबे गुस्से, डर, अकेलेपन को बाहर लाने की कोशिश करता है।
मैक्स का मानना है कि बिगर समाज की पैदाइश है, एक बीमार समाज का लक्षण।
बिल्कुल, और अदालत में मैक्स का जो लंबा भाषण है वो उपन्यास का एक तरह से निचोड़ है। वो बिगर का बचाव इस तरह नहीं करता कि बिगर निर्दोष है।
नहीं, वो तो पूरे अमेरिकी समाज को ही कटघरे में खड़ा कर देता है।
हाँ, वो तर्क देता है कि ये समाज, ये व्यवस्था, ये नस्लवाद, ये गरीबी, यही असली अपराधी हैं। इन्होंने ही बिगर जैसे नेटिव सन इस धरती के बेटों को बनाया है।
वो कहता है कि जब तक ये हालात नहीं बदलेंगे, बिगर जैसे लोग पैदा होते रहेंगे।
एक बहुत ही शक्तिशाली रेडिकल तर्क था ये उस समय के लिए।
लेकिन क्या अदालत इसे सुनती है? क्या जूरी पर इसका असर होता है?
नहीं, अभियोजन पक्ष बिगर को एक जानवर, एक खतरा बताता है। और नतीजा लगभग तही था।
उसे दोषी पाया जाता है और मौत की सजा।
हाँ, और अंत में मैक्स उससे आखिरी बार मिलने जाता है। वो बातचीत बहुत मार्मिक है।
बिगर क्या कहता है?
वो अपनी उलझने बताता है और फिर वो कुछ ऐसा कहता है जो मैक्स को भी चौंका देता है। वो कहता है कि जब उसने मारा तभी उसे पहली बार लगा कि वो जिंदा है, कि उसका कोई मतलब है।
ओह,
उसके आखिरी शब्द कुछ ऐसे हैं, व्हाट आई किल्ड फॉर आई एम, मतलब जिस चीज के लिए मैंने मारा वही मैं हूं।
ये शब्द दिल में चुभ जाते हैं। ये हार भी है और एक भयानक किस्म की स्वीकृति भी, उस गहरी चोट का इजहार जिसे सिस्टम ने उसे दिया था।
बिल्कुल, ये समझना मुश्किल है पर ये उस त्रासदी की गहराई दिखाता है।
तो अगर हम इस उपन्यास के मुख्य विषयों को देखें,
हाँ,
सबसे ऊपर तो व्यवस्थागत नस्लवाद का विनाशकारी प्रभाव है।
हाँ, ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, ये इंसान की आत्मा को, उसके मनोविज्ञान को कैसे तोड़ता है, ये राइट दिखाते हैं।
और डर, डर एक केंद्रीय भाव है। बिगर का हर कदम डर से तय होता है।
हाँ, श्वेत दुनिया का डर, पकड़े जाने का डर, अपनी पहचान खोने का डर, और ये डर नफरत में बदलता है, फिर हिंसा में।
और वो नेचुरलिज्म वाली बात भी कि इंसान अपने माहौल की उपज है, बिगर की नियति जैसे पहले से लिखी हुई लगती है।
हाँ, मैक्स का भाषण ऐसी फलसफे को सामने रखता है, और राइट श्वेत उदारवाद की सीमाओं को भी दिखाते हैं। मैरी और जेन नेक नियत हैं, पर वो बिगर की असलियत को, उसके डर को समझ नहीं पाते।
वो उसे एक प्रतीक की तरह देखते हैं, एक व्यक्ति की तरह नहीं, यहां तक कि मैक्स।
हाँ, मैक्स भी जो इतनी सहानुभूति रखता है, वो भी बिगर की उस आखिरी भयानक आत्मस्वीकृति को पूरी तरह समझ नहीं पाता शायद।
उनके बीच भी एक दूरी रह जाती है, संवाद की, समझ की एक खाई।
बिल्कुल, और सबसे परेशान करने वाला विषय शायद यही है, हिंसा के जरिए पहचान खोजना।
हाँ, कि एक ऐसी दुनिया में जो उसे अदृश्य मानती है, हत्या करना ही उसके लिए अपने होने का एहसास बन जाता है। ये बहुत ही विचलित करने वाला विचार है।
और जिस तरह राइट ने ये कहानी कही है, वो पाठक को बिगर के दिमाग में ले जाते हैं।
हाँ, थर्ड पर्सन लिमिटेड नजरिया, हम दुनिया को बिगर की आंखों से देखते हैं, उसके डर, उसके गुस्से को महसूस करते हैं।
इससे हम उसे सही भले न ठहराएं, पर हम उसके कामों के पीछे के तर्क को, उसके आतंक को समझने लगते हैं।
और भाषा बहुत सीधी, सपाट, कहीं कहीं क्रूर, कोई सजावट नहीं।
हाँ, जैसे दुनिया की कठोरता को ही शब्दों में ढाल दिया हो। और प्रतीक, वो भी बहुत शक्तिशाली हैं।
जैसे वो चूहा।
हाँ, जो खुद बिगर का प्रतीक है, फंसा हुआ, घृणित, हिंसक।
मिसेस डाल्टन का अंधापन,
जो शायद श्वेत समाज के लाक्षणिक अंधेपन का प्रतीक है। वो अश्वेतों की इंसानियत उनके दर्द को देख नहीं पाते।
डाल्टन की सफेद बिल्ली जो हर जगह घुस आती है।
हाँ, वो हावी श्वेत दुनिया का प्रतीक। और वो भट्टी
जो सबूत मिटाने की कोशिश भी है और सच उगलने का जरिया भी।
ये सब मिलकर कहानी को बहुत गहरा बनाते हैं। इसे पढ़ना वाकई एक गहरा अनुभव है। हाँ, ये बेचैन करने वाली किताब है। ये आसान जवाब नहीं देती, आपको मजबूर करती है कि आप उस समाज के बारे में सोचें जिसने बिगर को बनाया।
आप बिगर को सिर्फ एक राक्षस कहकर खारिज नहीं कर सकते, आपको उस घुटन, उस डर को महसूस करना पड़ता है जो कहानी में व्याप्त है।
बिल्कुल, ये न्याय, इच्छा स्वतंत्र और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर बहुत मुश्किल सवाल खड़े करती है।
ये पाठक के नजरिए को चुनौती देती है, दिखाती है कि हिंसा हमेशा सही गलत का सीधा चुनाव नहीं होती।
हाँ, बल्कि वो असहनीय सामाजिक दबावों की एक जटिल, दुखद प्रतिक्रिया भी हो सकती है।
तो अंत में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे व्यवस्थागत अन्याय व्यक्ति के मनोविज्ञान को कितनी गहराई तक प्रभावित कर सकता है।
हाँ, और उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। और ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि नस्ल, डर, पहचान और सामाजिक जिम्मेदारी के ये सवाल आज भी हमारे सामने हैं।
यह संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।